खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं लेकर आए हैं वो मेरे साथ निकालें, नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप उसकी 27वीं आयत से 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। 27वीं आयत से 30वीं आयत तक। और हम सब सीख रहे हैं कि पालूस रसूल कहता है कि तुम तारीकी के नहीं बल्कि नूर के फर्जंद हो, और हम अपनी मसीही जिंदगी में उन तमाम बातों पर गौर कर लें कि किन से हमें फायदा है और किन से हमें भी कोई फायदा नहीं है, कौन सी बातें हमारे लिए मफीद है और कौन सी बातें बेकार हैं। इसलिए ईमानदार होते हुए हमें लोगों के लिए, फरिश्तों के लिए, इर्द गिर्द के पड़ोसियों के लिए क्या बनना है? नमूना, मिसाल बनना है, ना कि हम उनके लिए ठोकर का बायस, ना कि उनके लिए गुमराही का या फिर तोए तोए का बायस बने, या फिर तोबा तोबा का बायस बने। अगर हम बने तो किसका बायस बने? कि खुदावन के नाम को जलाल मिले। सो इसलिए हम खुदावन यीशु मसीह के मुबारक लबों से निकले हुए इस सच को पढ़ेंगे जो आज से बहुत देर पहले उसने अपने शागिर्दों के दरमियान और पहाड़ पर उस खड़े तमाम लोगों के हजूम के सामने ये सच कहा था। सो मत्ती की इंजील उसका 5वां बाप उसकी 27वीं आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर नगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। पास अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए, और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और सारा बदन जहन्नम में ना जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यहां पर खुदावन यीशु मसीह शरीयत के उन कौलों को याद दिलाते हैं कि क्या कहा गया था, कि तुम सुन चुके हो क्या कहा गया था उन तमाम लोगों को जो इस हयूम में मौजूद है। यीशु मसीह कौन था? यहूदी। यीशु मसीह कौन था? यहूदी। वो इब्राहिम की नस्ल से, दाऊद की नस्ल से, यकूब के घराने से, इसलिए उसे क्या कहा गया है? यहूदी। और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? निजात कहां से है? यहूदा के खानदान से, यानी कि यहूदियों से, कि उन्हीं के वसीला से एक मसीह आएगा, उसका नाम क्या होगा? अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, जिसका नाम अमैनुअल भी होगा, खुदा हमारे साथ, जिसका नाम चरवाहा भी है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देगा, जिसे बर्रा भी कहा गया है। देखो वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। सो इस हिस्सा में खुदावंद यीशु मसीह उनको याद दिलाते हैं जो ऑडियंस खड़ी है, जैसे आज आरवाला में आरवाला के हरैशी मौजूद हैं, वैसे उस दौर में यीशु मसीह के सामने वो तमाम यहूदी, तमाम वो लोग जो उस इलाका में थे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको शरीयत याद दिलाई कि शरीयत में क्या कहा गया था? कि जना ना करना। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ क्या कर चुका? गुनाह कर चुका। इसलिए आम ईमानदारों का सोचना बहुत ही अहम है। ये हमारा जो मैदान है, जिसे कहते हैं कि जंग का मैदान, हमारा दिमाग क्या है? जंगी मैदान है। इस मैदान में ही जंग लड़ी जाती है, और जब यहां पर हम जीतते हैं तो हम अपनी जिंदगी फतामंदी की बसर करते हैं। अगर हम अपने जहन में ही हार जाएं, असासे कमतरी का शिकार हो जाएं, असासे कमतरी से मुराद मैं इस लायक नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता, मुझ में कुव्वत नहीं, ये दुरुस्त है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। हमारा जिस्म कमजोर है, वो अपने आप से कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए उसे चलाने के लिए रूह मुस्तैद है। मत्ती की इंजील उसका गालबन 24वां बाप उसकी 41वीं 21वां बाप या 24वां बाप है, वहां पर लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। सो हमको पाक रूह है जो ऐसी जिंदगी, गालबाना जिंदगी गुजारने की कुव्वत और ताकत देता है। सो हम मसीहियों को अपने सोचने के तरीकेकार को क्या करने की जरूरत है? दुरुस्त। हमारा मुखालफ नहीं चाहता कि हमारी सोच पॉजिटिव, जिसे कहते हैं मुसबत, हो। अबलीस चाहता है हमारी सोच मनफी हो, जिसमें हमें कोई फायदा नहीं, जिसमें वो सबसे पहले हम पर जो इल्जाम लगाता है और झूठ बोलता है, तुम इस काबिल नहीं कि तुम दुआ पर भी जाओ, तुम गुनाहगार हो, तुम्हें गिरजा घर में जाने की जरूरत क्यों है। ये सादा सा सच है जिसमें बहुत दफा वो लोगों को गुमराह करता है। बीमार को कहां पर जाने की जरूरत है? डॉक्टर के पास। गुनाहगार को किसके पास जाने की जरूरत है? यीशु मसीह के पास। हमें आदम का वो किस्सा दोहराने की जरूरत नहीं कि अपने जहन में पहले ही शिकस्त खाए हुए लोगों की तरह जिंदगी बसर करें। खुदा की तरफ जाने के बजाय आदम और हवा कहां गए? अंजीर के पत्तों के लूंगे बनाकर, लूंगियां बनाकर उन्होंने पहनी और अपने आप को बाग के दरख्तों में छुपाया। हमें खुदा की तरफ भागने की जरूरत है, ना कि खुदा के मुखालफ। दूसरी तरफ नहीं जाना। सो इबलीस ये चाहता है कि एहसास कमतरी के शिकार में वो हमसे क्या कहे कि तुम इस काबिल नहीं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई किसी में किसी के साथ बुरी ख्वाहिश रखता है, निगाह रखता है, तो वो अपने दिल में उसके साथ क्या कर चुका? जिनाह कर चुका। सो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पास अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। कुछ लोग इसे कहते हैं कि बड़े ही सख्त तरीके से लेखते हैं, तो और वो अपने को जिस्म को क्या देना कर देते हैं? सजा शुरू देते हैं करना। कहते हैं कि जी मेरी आंख ने गुनाह किया और आंख निकाल दी, काना हो गया। हाथ ने गुनाह किया, हाथ काट दिया। सो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर जो भेद हमें सिखाना चाहते हैं वो ये है कि उन चीजों पर जो अगर मेरी दाहिनी आंख मुझे बदी करवाती है तो उस आंख का कब्जा कंट्रोल मुझ पर ना हो, उस आंख पर मुझे इख्तियार रखने की जरूरत है। क्योंकि जैसे जुबान है इस पर हम इख्तियार रखते हैं, जैसे आंख है हम इस पर इख्तियार रखते हैं कि इसे क्या देखने के लिए कहें। दाऊद नबी के वाक्या में उसकी आंख ही से ये बदी शुरू हुई थी कि उसने अपने महल में खड़े होकर छत पर से अति उरिया की बीवी को देखा। इसलिए हमारा देखना बहुत ही अहम है कि हम किस तरह देखते हैं। जैसे सुनना बहुत अहम है, कलाम सुनना जब करते हैं शुरू तो क्या होता है? ईमान पैदा होता है। अगर हम बदी देखना शुरू करेंगे तो इसे कहते हैं आई गेट, आंखों के दरवाजा से जो कुछ जाएगा वो कहां पर जाएगा? हमारे दिमाग में। यूनानी तरीकाकार में बहुत दफा लफ्ज दिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे कहा जाता है लोभ। डॉक्टरी जबान में इसे लोभ कहा जाता है, लेफ्ट लोभ राइट लोभ, यानी कि खब्बा हिस्सा और सज्जा हिस्सा। हमारे जहन में दो हिस्से हैं दिमाग में, खब्बा हिस्सा और सज्जा हिस्सा। खब्बा वो है जहां पर मालूमात जाती है और फिर जाकर सज्जे हिस्से में ठहरती है, और वही मालूमात ठहरती है सज्जे हिस्से में जिसे हम अमली तौर पर करना चाहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे चाय पोनी है, जब हम चाय को पुनते हैं तो जो कुछ हम नहीं चाहते कि उस कप में जाए वो पोनी में रह जाता है। तो डॉक्टरी लिहाज से खब्बा हिस्सा वो है जहां पर तमाम मालूमात जाती है और बाद में उस मालूमात को खुदा का ये निज़ाम है, हमारा जो अंदर का निज़ाम है वो उसे साफ करता है और सज्जे हिस्से में जाकर उस पर हम अमल करते हैं। सो अगर हमारा दिल दुरुस्त है, अगर हमारी आंख दुरुस्त है, जैसे मत्ती की अंजील छठे बाप ही में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि लिखा है बदन का चिराग क्या है? आंख है। अगर तेरी आंख खराब हो तो सारा बदन तारीख होगा। अगर हमारा देखना, हमारा क्या कहता है कि मालूमात हासिल करना, अगर हम हाथी को घोड़ा कहेंगे तो क्या होगा? हमारा देखना क्या है? दुरुस्त नहीं, हमें समझ नहीं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि अगर तेरा बदन का चिराग आंख है, हमारी बदन को चलाने के लिए आंखों की जरूरत है। अगर हमारी आंखें तारीख हैं तो हमारा बदन भी सारा तारीख होगा। सो समझ, अदराक, फहम जिसे कहते हैं, हम ईमानदारों को अपनी सोच समझ में ठोकर नहीं बनना, बल्कि क्या बनना है? मिसाल बनना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने 23वीं आयत में कहा था, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीख होगा, पस अगर वो रोशन हो, अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो जाए तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। अगर रोशनी चली जाए तो तारीकी है, कोई देख नहीं सकता। वैसे ही रूहानी तौर पर अगर हमारा फहम, हमारे सोचने का तरीकाकार गलत हो जाए तो हम गलत ही रहेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने दिल में, कहां? यहां पर बहुत दफा खाड़ियों, इंग्लिश जुबान में जो डॉक्टर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खाड़ियों जिसे कहते हैं दिल, जिस पे हमारा दिल धड़कता है बुम 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 बुम, और बहुत दफा यूनानी जुबान में ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है हमारे दिमाग के लिए, हमारे जहन के लिए है, कि अगर हमारा सोचना, हमारा निजाम कहां पर है? यहां पर वो तमाम इमोशन जिसे एहसासात कहते हैं, मेरा दिल टूट गया, मुझे अफसोस हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये कब होता है? जब यहां पर कुछ होता है। सो हमें दिमाग को, इसीलिए पदेश 3 बाप में हवा ने देखा और उसने समझा कि आंखों को अच्छा लगता है, और उसने क्या किया? उस फल में से खाया। हर बात आंख से शुरू होती है, जो कुछ आंख देखती है वो दिमाग को मालूमात देती है और दिमाग फैसला करता है। अगर दिमाग को समझ है कि गलत और दुरुस्त का उसे इम्तियाज है, समझ है, तो फिर क्या होगा? अगर समझ ही नहीं तो फिर दिमाग उस बात को पूरा कर नहीं सकता। इसलिए हमें अपने सोचने के तरीकेकार को खुदा के तरीकेकार की तरह करना है। सो कैसा तरीकाकार होना चाहिए? मेरे साथ निकालें फिलिपियों 2 बाप, फिलिपियों 2 बाप उसकी 5वीं आयत। चौथी आयत से जब हम पहली 3 आयात को पढ़ते हैं तो यहां पर सोचने का, जिंदगी का तरीकाकार बताया गया है। फिलिपियों 2 बाप, 2 बाप उसकी 5वीं आयत, जब हम चौथी आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे, गौर करे, देखे, समझे। जिसे कहते हैं मैं ना जिंदगी गुजारे, बल्कि उसमें तू की भी आवाज आनी चाहिए। और क्या लिखा है 5वीं आयत? वैसा ही मिजाज रखो। मिजाज जैसे सोचने का तरीका, रवैया, हमारे दिल के अंदेशे कैसे होने चाहिए, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। हमें मसीह जैसा मिजाज रखने की जरूरत है। और मसीह का मिजाज क्या है? बुराई का नहीं, तारीकी का नहीं। इसलिए हम अपने बदन पर, अगर हमारा दाहिना हाथ हमें गुनाह की तरफ लेके जाता है तो हमें अपने हाथ के गुलाम नहीं होना। मेरे साथ निकाले रोमियो 6 बाप उसकी 13 आयत। रोमियो छठा बाप उसकी 13 आयत। यहां पर पालूस रसूल इसे यूं बयान करता है जो यीशु मसीह का कॉल है कि अपनी आंख अपने दिल के गुलाम ना बनो, उसको अपने ऊपर अख्तियार ना दो। छठा बाप उसकी 13वीं आयत, 12वीं आयत से जब पढ़ते हैं, पस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। जिस्म को हमारे फानी बदन में, हो सकता है हमारी जुबान को जायका इतना पसंद है कि हम खाते जाते खाते जाते खाते जाते हैं, अपनी जुबान को अपने जायके को अपना बादशाह ना बनने दो। अपने हाथों को, हमारे हाथ शरारत के लिए काम करते हैं, अपने हाथों को शरारत के लिए इस्तेमाल ना होने दो। हमारा जहन अगर बुरी स्कीमें बनाता है, बुरे मंसूबे बनाता है, तो उस जहन को, हमारे जो फानी बदन है, उसको अपने ऊपर बादशाही करने ना दो। अगर हमारे पांव बदी की तरफ जाते हैं तो उन पांव को हम रोक सकते हैं। खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह कहता है कि ना समझ और सादा दिल बंदा ऐसा है जैसे कि बैल अपने जिबा करने वाले की तरफ जाता है। ना समझ बंदा जो दिल से बहुत दफा नहीं समझता, वो क्या करता है, अपने आप को हलाकत की तरफ लेके जाता है। 13वीं आयत में क्या लिखा है, और अपने अज़ा, हर एक बदन का हिस्सा, हाथ है, पांव है, मुंह है, कान है, आंखें हैं, जुबान है, हर एक, और अपने अज़ा नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो। अगर हम सोचेंगे बुरा तो उसका नतीजा बुरा निकलेगा, अगर हम कदम बढ़ाएंगे बुराई के लिए तो वो बुराई की तरफ जाएंगे। इसलिए पालूस कहता है, तुम सबको इख्तियार है कि रूहुल कुद्दस की कुदरत में अपने जिस्म के हिस्सों को, जो बदी करना चाहते हैं उसे बदी की बजाय भलाई की तरफ, जो शरारत करना चाहते हैं उसे शरारत की तरफ, रास्तबाजी की तरफ लेके जाएं। नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो, क्योंकि लिखा है क्या, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्ती रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुतहद नहीं बल्कि फजल के मुतहद हो। सो कहा गया था जना ना करना, लेकिन मैं कहता हूं कि जो कोई अपने दिल में बुरा ख्याल किसी के लिए करेगा वो बदी कर चुका। सो बहुत दफा अबलीस हमें भारता है, बहुत दफा हमारे अंदर जो गुरानलुदा फितर बैठी है वो हमें भारती है। सो इस दिल का निज़ाम हमारा सोचने का कैसा होना चाहिए, मसीह के रवैये जैसा। मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील, यहां पर जो दिल में से बातें निकलती हैं, दिल में से जो बातें निकलती हैं, एक हमारा दिल है जो लोथड़ा है, जो जैसे यहां पर खून का निज़ाम चलता है और वो पंप बनता है और पंप करके सारे बदन को देता है, और एक निज़ाम है जिसे कहते हैं दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, जो हमारे दिमाग में है। मत्ती की इंजील गालबन उसका 15वां बाब है, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सोचने के तरीकाकार को बताया है कि फरीसी क्या कहते हैं कि अगर हाथ धोएंगे तो हम पाक हैं, अगर नहीं हाथ धोएंगे तो ना पाक हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको बयान करता है कि कौन सी चीज हमें ना पाक करती है और कौन सी चीज से हमें नुकसान नहीं है। मत्ती की इंजील गालबन 15वां बाब, हाँ जी 15वां बाप ही है। जब हम उसे 15वीं आयत से पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जवाब दिया है, फरीसियों और फकीयों ने कहा है कि खाना खाते वक्त तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते और बुजुर्गों की रवायत को तोड़ते हैं और वगैरह वगैरह बातें कही हैं। सो 15वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से शागिर्द बात करते हैं और पूछते हैं, और पतरस ने यहां पर क्या कहा, पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। तमसील का मतलब बहुत दफा गोलमोल बातें जिसकी समझ ना आए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवत थी जबूर 87 में कि वो कदीम महमों में या फिर तमसीलों में गोलमोल बात करेगा। सो शिगिर्दों ने कहा हमें यह समझा दे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 16वीं आयत, उसने कहा क्या तुम अभी तक बेसमझ हो, क्या अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, तुम्हारा दिल तुम्हारे सोचने का तरीका कार दुरुस्त नहीं हुआ। तो क्या कहा गया, क्या नहीं समझते, हम कहां समझते हैं, दिल से यहां या यहां, यहां हम समझते हैं हमारे दिमाग में, हम किस तरह समझते हैं, सारा कुछ सोचने का निजाम कहां पर है, हमारे दिमाग में, जिसे हम दिमाग या बहुत दफा कहते हैं गुस्से में माए कहते तेरा मैं भेजा काट दूं। क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, हम खाते हैं हजम हो जाता है और बाथरूम में उस मजबला को निकाल देते हैं, ये कुदरत का निजाम है, इससे हैरान होने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह को शर्म नहीं आई, हमें भी शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसका बनाया हुआ निजाम है, हम खाते हैं हजम होता है और हम खुदा के निजाम के मुताबिक चलते हैं। 18वीं आयत, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, जो बात मुंह से निकलती है वो दिल से निकलती है, दिल में किस तरह जाती हैं, अगर हम देखते हैं तो हमारे दिल में जाती है, अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिल में जाती है, और जो कुछ हमारे दिल में होगा वो मुंह से निकलेगा। तो क्या कहा गया है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, ये वो बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, हाथ किसी वक्त धोए बगैर खाना खा लेने से हम नापाक नहीं होंगे। यखुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को जवाब दिया था, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नापाकी किससे है, जरा गौर से सुने, क्योंकि बुरे ख्यालात, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाही, बदगोहियां दिल ही से निकलती हैं। तो जो कोई अपने दिल में किसी के खिलाफ बुरा मंसूबा बनाता है, तबाह करने का, बदी का, वो कहां से निकलता है, दिल से। इसलिए हमारे दिल का निजाम दुरुस्त होगा तो हमारा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जब हमारा दिल दुरुस्त होगा तो हमारा हाथ हमारे खिलाफ और खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करेगा। सो हर तरह के गुनाह दिल से शुरू होते हैं और वो जब मुंह से निकलती हैं तो वो बातें कहां से निकलती हैं, उसकी जड़ कहां से है, यहां से निकलने से पहले वो यहां आती है, सोचते हैं ना हम यहां कि मैनू की कहां, ऐसी गंदी गल कहां जिहड़े नाल कहिंदे कि अगले दा सत्यानाश कर दां, कहां पर, दिमाग में गाली निकालूं या कोई ऐसी पुरानी कोड़ कबाड़े की बात निकालूं जिससे किसी बंदे का क्या हो, तरक्की ना हो बल्कि उसका दिल जल जाए, उससे नफरत भरे अल्फाज कहूं, वो कहां से निकलते हैं, हमारे दिमाग में से, हमारे दिल में से, यहां से निकाल लें वो यहां से ही शुरू होते हैं, यहां से निकाल लें वो यहां पर आते हैं और फिर लबों पर आ जाते हैं। सो बुरे ख्यालात, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं, यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, बगैर हाथ धोए खाना पीना आदमी को नापाक नहीं करता। सो हमारे सोचने का निजाम, अगर हमारा दिल दुरुस्त है, हमारी समझ दुरुस्त है, तो हमारी जिंदगी का तरीका हयात भी दुरुस्त होगा। इसलिए आए हम पालूस के साथ जो दुआ उसने करंथियों इफ्सियों के कलीसिया के लिए की थी, हम अपने लिए करने वाले बने। इफ्सियों पहला बाप उसकी 17वीं आयत में पालूस रसूल दुआ करता है कलीसिया के ईमानदारों के लिए, और आप ये दुआ अपने लिए और मुझे अपने लिए ये दुआ करने की जरूरत है, और यहां पर यूं लिखा है, इफ़सियों पहला बाप उसकी 17वीं आयत, कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशवा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, हमारे सोचने समझने का तरीका वाजिया हो जाए, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आमीन। आई हम खुदा के जुड़ चुके हैं।